हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रूहान के कमरे में रूहान और अनाही दोनों बेड पर सोए हुए थे। रूहान का एक हाथ अनाही की गर्दन के नीचे था, तो वहीं एक हाथ उसके खुद के सिर के नीचे। वो अपनी गर्दन घुमाकर अनाही के चेहरे को देख रहा था और अनाही गहरी नींद में नजर आ रही थी। आज रूहान ने उसे इतनी बातें की थी कि उन्हें सुनते सुनते ही अनाही सो गई। हाँ, ये जरूर था कि उसने रूहान की किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद रूहान का बोलना बंद नहीं हुआ था। शायद उसने इतनी बातें आज से पहले कभी नहीं की थी। रूहान ने एक नज़र घड़ी में टाइम देखा, जिसमें शाम के 6 बजने वाले थे, और उसे पता था अनाही टाइम की कितनी पक्की है। अगर वो लेट उठेगी तो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन रूहान का मन भी नहीं कर रहा था अनाही को इतनी गहरी नींद से जगाने का, क्योंकि उसे पता था कल रात भी अनाही बिल्कुल नहीं सोई होगी। और अब वो सोते वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि चाहकर भी रूहान उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसने धीरे से अपना हाथ अपने सिर के नीचे से निकालकर अनाही के गाल पर रखते हुए कहा, मैडम जी। रूहान की एक बार पुकारने से ही अनाही की आंखें झट से फूल गई थीं, जैसे वो गहरी नींद में नहीं बल्कि बस कुछ पल के लिए आंखें मूंद कर लेटी हो। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, जिन्हें देखकर रूहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये क्या, मुझे लगा था सोने की वजह से आपकी आंखों का ये लाल रंग चला जाएगा, लेकिन ये तो गया ही नहीं। क्या आपका सर दर्द कर रहा है? अनाही ने ना में गर्दन हिलाई और फिर बेड पर उठकर बैठ गई। उसके साथ रूहान कटकर बैठकर जल्दी से बेड से नीचे उतरकर अनाही के सामने आता है। वो बोला, वो बस मैंने इसलिए उठा दिया था क्योंकि आपने कहा था 6 बजे आपको नीचे जाना है। रूहान की बात सुनकर अनाही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कितना परेशान कर रही हूँ। रूहान ने जल्दी से कहा, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? हर पत्नी अपने पति को परेशान करती है, आप किसी पड़ोसी को तो परेशान नहीं कर रही। हाँ, आप सॉरी बोलने के बजाय कुछ और कर सकती हैं, अगर आपको सच में लग रहा हो कि मुझे ज़्यादा बुरा लगा है। रूहान की बात सुनकर कन्फ्यूजन में अनाही की आंखें छोटी हो गईं। रूहान ने जल्दी से उसके करीब आते हुए कहा, आप मुझे किस कर सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, और उसके बाद शायद मेरे चेहरे पर आई परेशानी भी पूरी तरीके से गायब हो जाए। अनाही ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आपको नहीं लगता आप दिन ब दिन ज़्यादा ही बिगड़ते जा रहे हैं? ये सुनकर रूहान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी के लिए बिगड़ रहा हूँ, किसी पड़ोसन के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बिगड़ना कहीं से भी बुरा नहीं है, और आपके लिए अभी भी मुझे लगता है ये बहुत कम है। मुझे तो अभी और ज़्यादा बिगड़ना है, जब तक आप मुझसे पूरी तरीके से परेशान ना हो जाएं। इतना बोलकर रूहान आगे आकर आहिस्ता से अनाही के माथे को अपने होठों से छू लिया, जिसके साथ ही अनाही की आँखें एक पल के लिए बंद हो गईं और उसकी पकड़ रूहान की शर्ट पर कस गई। अनाही एक गहरी सांस लेते हुए बेड से उठी और फिर धीमे कदमों से बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही रूहान के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे खुद पर प्राउड फील हो रहा था कि उसने अपनी मैडम जी का मूड थोड़ा ही सही लेकिन ठीक कर दिया था। वहीं अनाही बाथरूम में जाने के बाद अपने कपड़े निकालते हुए अपने घर वालों के बारे में ही सोच रही थी। उसकी आंखें बार बार भर रही थीं। प्रिया उसकी सगी बहन नहीं है, ये सोचकर ही उसका दिल बुरी तरह घुट रहा था। उसके गले में तेज दर्द हो रहा था, जैसे वो चीख कर रोना चाहती हो। उसने ठंडे पानी का शावर ऑन किया और फिर आंखें बंद करके उसके नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे वो ठंडा पानी अनाही के शरीर पर गिर रहा था, वो कांपते हुए अपनी मुठियां बंद कर रही थी, क्योंकि इस महीने में ठंड शुरू हो चुकी थी और इस वक्त ठंडे पानी से नहाना कहीं से भी ठीक नहीं था। वहीं बाहर रूहान इस वक्त मोहिनी से कॉल पर बातें कर रहा था। देखो यार, मुझे मैडम जी को एक सरप्राइज देना है और मैं चाहता हूँ उसमें कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रूहान की बात सुनकर मोहिनी ने आराम से कहा, पहले तो तू घबराना बंद कर, मैडम जी का नाम आते ही इतना एक्साइटेड हो जाता है कि तुझे कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, ज्यादा कुछ नहीं तो उन्हें वाटर पार्क लेकर जा सकता है या फिर किसी डेट पर। रूहान ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम जहां हम रहते हैं जंगल में वहां कोई डेकोरेशन करवा सकती हो? क्योंकि मैंने मैडम जी से प्रॉमिस किया है हम हर संडे वहां जाएंगे, तो इस संडे तुम वहां पहले से डेकोरेशन करवा देना और वो सारी चीजें मुझे खुद अपनी आंखों से देखनी है। तो दो दो चीज तुम खरीदो, साथ में मुझे शेयर करती रहना, और अभी से काम पर लग जाओ, मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए। रोहान की बातें सुनकर मोहिनी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने मन में कहा, इन मियां बीवी के चक्कर में मेरा पूरा हफ्ता बर्बाद हो जाएगा। उसने हल्के गुस्से में कहा, रोहान इतनी बचकानी बातें भी मत करो, अभी संडे में तो पूरे 5 दिन है, मैं कर लूंगी आराम से, अभी से प्रेपरेशन करो। रोहान ने हल्के गुस्से में कहा, वो मेरी मैडम जी हैं, उनके लिए 5 दिन बहुत कम है, तुम अभी से शुरू हो जाओ अगर मुझे एक अच्छा दोस्त मानती हो, और अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। वैसे भी मुझे चीजें अकेले करने की आदत है, जब मुझे किसी का साथ चाहिए होता है तो वो वैसे ही मुझे छोड़कर चला जाता है। तुम भी जाने के लिए फ्री हो, तुम चाहो तो अब भी मेरा कॉल कट करके जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मुझे लोगों के साथ जबरदस्ती करने की आदत नहीं है, मोहिनी ने तेज आवाज में कहा। वो हिंदी फिल्मों के खलनायक, अपने इमोशनल थ्रेड्स अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा ये ड्रामा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ठीक है, मैं करती हूँ अभी से प्रेपरेशन, और आइंदा से ऐसे बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, अगर तेरा मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला और मुझे फ्री छोड़ने वाला। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उसके हिसाब से बातें किया करो मुझसे, कि बड़ों वाली बातें तुम्हारे मुंह पर बिल्कुल सूट नहीं करती। शादी क्या हो गई है, पता नहीं खुद को कितना बड़ा आदमी समझने लगा है। इतना बोलते हुए मोहिनी ने कॉल कट कर दिया और रोहान के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी जिंदगी में कम दोस्त बनाए थे, लेकिन जो भी बनाए थे वो इतने बेमिसाल थे कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। वहीं दूसरी तरफ रितेश और जिग्नेश फिलहाल एक डॉक्टर के केबिन में मौजूद थे, और ये कोई और डॉक्टर नहीं बल्कि रूहान की दोस्त डॉक्टर रश्मि, साइकेट्रिस्ट थी, जिसके पास रूहान सीक्रेटली अपना इलाज करवा रहा था। रश्मि ने थोड़ा घबराते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, नमन के जाने के बाद मैंने आप दोनों को कभी नहीं देखा, क्या कोई काम था आपको, क्या किसी का इलाज करवाना था? जिग्नेश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, हमने सुना है रूहान आज भी तुमसे इलाज करवाता है, लेकिन मुझे लगता है वो किसी भी तरीके से बीमार नहीं है, तो फिर इलाज किस काम का? घबराहट के मारे डॉक्टर रश्मि के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। वो अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए बोली, नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, रूहान मेरे पास नहीं आता है और ना ही मैं उसका इलाज कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर रितेश शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, हमसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है डॉक्टर रश्मि, आपको कुछ दिखाते हैं, शायद उसके बाद आपको याद आ जाए कि आप रूहान का इलाज कर रही हैं या नहीं। रितेश की ये धमकी सुनकर डॉक्टर रश्मि की आंखें फैल गईं, वो और भी ज्यादा डरने लगीं, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं आपके झूठ को सच बना दूं।
उसके बाद रितेश और जिग्नेश ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक गंदी स्माइल की, और फिर रितेश ने अपना फोन निकालकर डॉक्टर रश्मि की आंखों के सामने करते हुए कहा, ये देखिए जरा, शायद आपका इरादा बदल जाए।